ಚಕ್ಷೂರುಮಿಲಿತಂಗೀನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಶಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ. ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯಕೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರಕೃಷ್ಣೇ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಏಕದಾಲಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಸರ್ವಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾತ್ರ ಸಾರಂಭಿ ವಂಶಿ ಪಡತಟಿತ ಕರ್ಷನ ಬೇಲು ಸುನೈ ಗೋಪಿ ಗೋಪೀನಾಥ. मैंने परसों शाम के प्रवचन में बतलाया था कैसे गोपीनाथ जी प्रकट हुए, किंतु गोपीनाथ जी क्या हैं, गोपीनाथ जी का तत्व क्या है, हैं आखिर कौन, गोपीनाथ नाम क्यों पड़ा, इसके संबंध में हम कुछ बतलाने की चेष्टा करेंगे. गोविंद जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को समझने के लिए सबसे परम आवश्यक है श्री चैतन्य महाप्रभु को जानना. जब तक महाप्रभु जी को नहीं जानेंगे, उनके विचारों को नहीं जानेंगे, महाप्रभु के द्वारा प्रचारित जो शुद्ध भक्ति है उसका स्वरूप नहीं समझेंगे, तो गोविंद जी को, गोपीनाथ जी को, मदन मोहन जी को आप कदापि नहीं जान सकते. ये श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण हैं. कुछ विशेष उनकी इच्छाएं कृष्ण लीला में पूरी नहीं हुई, और देखा ये कृष्ण लीला में हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली भी नहीं है, इसलिए उन्होंने राधिका जी के भाव अंतर के और उनका गौर रूप सौंदर्य माधुर्य ऊपर का और भीतर का भी भाव ले करके आए बतलाने के लिए जो गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन हैं कौन, गोपीनाथ कौन है, इसको बतलाने के लिए. असल में राधा कृष्ण ये जो जुगल, ये प्रेम की मूर्ति हैं. कृष्ण जी को भी प्रेम की प्रेममयी मूर्ति राधिका जी ही बनाती है. यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, उनके परिकर शिल रूप गोस्वामी जी नहीं आते, वृंदावन लुप्त हो चुका था, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन जी लुप्त हो गए थे, ब्रज प्रेम प्राय समाप्त हो गया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी आए. सबसे पहले रूप गोस्वामी ने उनका परिचय दिया. अनर्पित चरिन चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयी तुम उन्नतोज्जल रसांस भक्ति सियम हरिहपूर सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत में सचिनंदन. सचिनंदन गौरहरि ये स्वयं कृष्ण हैं, कुछ अनुपम देन देने के लिए आए. अनर्पित जो एक कल्प तक नहीं दिया गया प्रेम, उसके पहले कृष्ण महाप्रभु जी के रूप में ही उन्होंने दिया था उस प्रेम को देने के लिए. वह प्रेम क्या है, समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसा, अपने उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस को जगत में वितरण करने के लिए. उन्नत उज्ज्वल कहते हैं क्या, साधारण लोग नहीं जानते. रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के आदेश से, इच्छा से ये बतलाया है. सीता जी राम की पत्नी हैं, वो भगवान कृष्ण ही हैं. मर्यादा के रूप में उसका स्थापन करने के लिए मर्यादा लोक में राम के रूप में कृष्ण आए, राधा जी सीता जी के रूप में आए। किंतु होने पर भी कोई माता जी की गलती नहीं होने पर भी रामचंद्र जी ने उनको दो दो बार निकाल दिया। क्यों? कोई पूछने वाला था। लंका में रावण के विजय के बाद जब उनको लाया गया तो सीता जी से क्या कहा? सीते, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, अपने वंश की परिक्रमा, वंश की रक्षा के लिए लांछन कोई न लगा सके इसलिए मैंने युद्ध किया। अब युद्ध समाप्त हो गया है, रावण का वंश ध्वंस कर दिया है, अब तुम जहां इच्छा हो तहीं चली जाओ। लक्ष्मण जी इस अन्याय को न सह सके किंतु कहने में असमर्थ थे। आग में जलने का, आग में प्रवेश करने का लीला दिखलाया। दूसरी बार रामचंद्र जी अयोध्या में जब लौटे, राज सिंहासन हो गया उनका। कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता जी को सारे जन्म जीवन के लिए बनवास दी। सीता जी का दोस्त था, अरे वशिष्ठ जी भी तो कहते, कौशल्या मैया भी तो कहती, तू ये क्या कर रहा, किंतु किसी ने न कहा। लक्ष्मण जी कहते किंतु उनकी जबान दबी रह गई। क्या था दोस्त सीता जी का? था कुछ नहीं, तो भी एक समाज में मर्यादा के स्थापने के लिए उन्होंने ऐसा। सीता जी को तो उन्होंने नहीं छोड़ा, राजा ने रानी को छोड़ा मर्यादा की स्थापना के लिए, किंतु राम अपने हृदय से कभी नहीं छोड़ सके। तो सीता जी को छोड़ सकते हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी कृष्ण की पाठरानियां द्वारका में हैं। कभी कभी सत्यभामा कुछ होड़ लगाती हैं तो कहते हैं कि सत्राजीत की कन्या को हमारे घर से बाहर कर दो, और थर-थर काप के बैठ जाती है। गोपियों को जरा कहेंगे, गोपियों राजे हमारे घर से निकल जाओ, कह सकते हैं कि नहीं? कहने की सामर्थ्य नहीं है, तो उल्टा जवाब दे देंगे, तुम्हारे घर में मैं पलती पोसती हूँ, एक कपड़ा भी साड़ी भी ला करके हमें दिया, एक रोटी भी कभी खिलाई जो अपने घर में, हम तुम्हारे घर की तुम्हारी बहू थोड़े हैं, उत्तर दे देंगी। इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा से सीता जी से भी लाखों करोड़ों उन्नत या राधिका जी के, गोपियों के भाव कृष्ण के प्रति। विवाह के लिए मोहताज नहीं है या प्रेम, ये जन्म से ही है, स्वभाव सिद्ध प्रेम है। गोपियां कहती हैं ये कृष्ण हम तुमको भूल जाना चाहती हैं, तुमको स्मरण नहीं रखना चाहती, और तुम भूलते नहीं, और तुम कहते हैं कि हमारे लिए समाधि लगाओ। समाधि हम क्या लगाएं, हम तो चाहते हैं तुम्हें भूल करके सदा के लिए बेश आनंद के साथ में संसार में बाल बच्चों के साथ में रहें, किंतु हमारे लिए संभव होता नहीं है, समाधि लग जाती है। गोपियों का ये स्वाभाविक कृष्ण के प्रति प्रेम है, कोई हेतु नहीं है उनके प्रेम में, विवाह हेतु नहीं है। सीता जी के विवाह में, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि के विवाह में विवाह हेतु है, नहीं तो वो समाज में रह नहीं सकते थे। और इन गोपियों ने कृष्ण के साथ प्रेम के लिए पतियों को छोड़ दिया, लोक धर्म को छोड़ दिया। स्त्रियां आग में जल मरना पसंद करेंगी। आप जानते हैं ये राजस्थान है, यहाँ क्या हुआ, मुसलमानों ने, जौन माताओं ने यहाँ पर चढ़ाई की चित्तौर की रानी को लेने के लिए, और को उन्होंने आग जलाकर अपने पतियों को दिखला दिया, अब तुम युद्ध के लिए जाओ, हमारे लिए चिंता मत करना, हम जौहर व्रत धारण कर रही हैं। बस आग में सभी कूद गई पतियों को देख के, और तब वो लड़ने के लिए उनको भेजा। ये तो ये गोपियों का जो प्रेम है अनूठा, लोक लज्जा को भी ध्यान नहीं रखती, जिसको व्रत के रक्षा के लिए इन्होंने जौहर व्रत धारण किया उसको साथ ही साथ में जलांजलि दे दी, उस पतिव्रता धर्म को भी नगण्य मान लिया, उसको छोड़ दी, लोक लज्जा भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा प्रेम कारिणी नहीं। कृष्ण उनके प्रेम में बंध जाते हैं। वृंदावन के सेवा पुंज में जाकर के देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, पलोटती राधा जी के पायन, ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेदन, और कहीं नहीं वेद की ऋचाओं में भी नहीं मिले। और कोई भक्त जाकर के देखता है सेवा कुंज में बैठे हुए श्रीमती राधिका जी के चरणों में अपना मुकुट बंसी दे करके उनकी मनिहारण करते हैं। ऐसा किसी के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस प्रेम को बतलाने के लिए उन्नत उज्ज्वल प्रेम इसको कहते हैं। इसको इसका नाम पारकीय भी असाव है। आज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त ब्रज का यह अनूठा प्रेम किसी भी संप्रदाय में यह संभव पर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको दिया, किस रूप में दिया वैसी को रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, अनर्पित चरण चिरात करुणया वतीर्ण कलऊ समर्पित तुम उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति सियम। उन्नत उज्ज्वल प्रेम को दिया नहीं, किसी को दिया उन्नत उज्ज्वल गोपियों का और राधा जी का भाव है, जो राधा जी की काय भी हुए राधा जी ही हैं, उनके उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव को यहाँ पर कहा गया। इसको नहीं दिया, क्या दिया, इसकी स्त्री को, इसकी ब्यूटी को दिया। जैसे कोई लता होती है, यहाँ पर लता तो अभी शायद नहीं है कहीं, लता में पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, मंजरी भी होती है, उसमें फल भी लग जाते हैं। तो यदि लता में पुष्प न हो, पत्ते नहीं हो, मंजरी नहीं हो, केवल लता केवल हो, तो उसका सौंदर्य कोई है, कुछ भी नहीं। जिस समय में हरे हरे पत्तों से भरे हुए लहलहा रही हो और हवा के झोंके आने के साथ ही साथ में पत्ते झिलमिल झिलमिल करने लगते हैं, उसमें मंजरियां हिलने लगती हैं, वो उसकी शोभा है। बल्कि हवा लता को जब छूता है तो मंजरियां क्या कहती हैं, नहीं नहीं मत छुओ, भाव ये होता है। ये मंजरिया कौन है, राधा जी की ब्यूटी है। यदि मंजरिया नहीं रहे तो राधा जी अकेले क्या कृष्ण के साथ में राज करेंगी, कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगी नहीं। इसलिए राधा जी का भाव नहीं, राधा जी के भाव की जो ब्यूटी है, माधुर्य है, सौंदर्य है, वह है रूप मंजरी इत्यादि, उनकी सेवा करती हूँ। उनके बिना राधा कृष्ण का मिलन भी संभव पर नहीं हो सकता। इसलिए उस भाव को माने राग मार्ग प्रवर्तन। कृष्ण कैसे हैं, परम करुण कृष्ण रसिक शिखर, यही दो हेतु कृष्ण लीला रूढ़ इच्छा रूढ़। कृष्ण बड़े रसिक हैं, साथ ही साथ बड़े करुण हैं, कृपालु हैं, रसिक हैं, इसलिए रसस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु जी के रूप में राधा जी का भाव लेकर के कृष्ण के माधुर्य को, राधा जी के प्रणय भाव को, राधा जी का प्रणय भाव कैसा है, कृष्ण से इतना प्रणय रखती हैं, कैसे प्रणय को भी समझना साधारण बात नहीं है। साधारण लोग समझ लेंगे श्रद्धा प्रेम प्रणय राग अनुराग सब एक ही चीज है, खिचड़ी पका देने। जब तक कि शुद्ध गुरु नहीं हो, उन्नत कोटि का रसी तत्वज्ञ भावुक भक्त न हो गुरु, इसको नहीं समझा जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे रसिक भावुक व्यक्ति थे, उन्होंने भागवत का प्रवचन किया, अन्यथा दूसरों के लिए ऐसा प्रवचन कभी संभव पर नहीं था। इसलिए कहा गया रसिका भूभाव का। चैतन्य महाप्रभु जी ने राधिका जी के प्रणय को, प्रणय माने क्या, जब प्रेम इस अवस्था में परिपक्व होकर के उपस्थित हो जाए, प्रेम के टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम पट जाए। संसार में ये प्रेम नहीं है। अभी किसी कारण से एक स्त्री ने कोई मजाक किया, क्या फूल डे था, तीसरा अप्रैल,
फर्स्ट अप्रैल
पत्नी ने कुछ मजाक पति से करना चाहा। उन्होंने पत्नी ने कि पति, पत्नी की बहन ने, उसने एक छोटा सा पत्र लिख दिया उसके नाम से, अपने बहन के नाम से, किसको, एक दूसरे व्यक्ति को जो उसका पति नहीं है, लिख दिया मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, इससे मैं शादी करके गलती किया, मैं दो चार दिन में प्रसूत होकर के तुम्हारे साथ में घर से निकल जाऊंगी, तुम्हारे साथ में रहूंगी। पति किसी तरह से उसके अपने पत्नी की पलंग पर तकिए के नीचे उस पत्र को देख लिया और जानबूझ करके उसकी साली ने ऐसा किया था। पत्र देखते ही आंखें लाल हो गई, संभाल नहीं सका और स्त्री को जैसे तैसे घर से निकाल करके बाहर किया। ये है ना, इस जगत में प्रेम नहीं है। यदि किसी को प्रेम होगा तो क्या होगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा, और मर नहीं जाएगा तो क्या होगा, जरूर पागल हो जाएगा। न प्रेम गंधोस्ति दरापि मे हरौ कन्दामि सौभाग्य फरम प्रकाशितम बंसी बिलास्यानन अवलोकनम बिना विभर्मजत प्राण पतंग का। राधिका जी कहती हैं और इसी को चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा हृदय में नहीं है। प्रेम रहता तो आज मैं जीवित नहीं रहती, मथुरा चले गए हमें छोड़ करके, और हम अभी जीवित हैं इसलिए हमारे जैसा कोई दुर्भाग्य नहीं है। हाँ, मछली को प्रेम, पानी से प्रेम होता है। मछली को पानी से निकाल करके रख दो, मछली क्या करेगी, छटपट करते हुए एक मिनट के अंदर मर जाएगी। एक पिता थे, कौन, महाराज दशरथ, राम वनवास चले गए, हा राम और तीसरा राम नहीं निकला, समाप्त हो गया। ये सब प्रेम है। मछली को प्रेम है, पानी से निकाल दो साथ ही साथ में मर जाएगी। ये प्रेम का नमूना है ना। और मैं आज तक बंसी बिलाना बिलास्यानन अवलोकनम बिना, मैं अपने प्रियतम कृष्ण के मुखारबिंद को आज कितने दिन हो गए देखा नहीं, मैं मर नहीं जाती, ये हमारा दोष नहीं, हमारे ये वज्र हृदय का दोष है ना, तभी मर जाना चाहिए। हम लोगों को कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम है, इसका लाख भाग का एक भाग भी तो भक्ति कहाँ रही। प्रेम साधारण चीज जगत में नहीं होता है। प्रेम का बंध को टूटने का कारण आने पर भी प्रेम बढ़ जाएगा 10 गुना, उसको कहते हैं अप्राकृत प्रेम, ब्रज का प्रेम। कैसे, यदि एक पति अपने विवाहिता स्त्री के घर में एक अपनी किसी प्रेमिका को ले आए, क्या होगा। हमारे प्राचीन यहाँ पर मैं था, वहाँ पर देखा एक बड़े भारी जमींदार लोग, करोड़पति, उनका रुपया वजन होता था तब, कैलोरी उनकी कितनी थी, उनका लड़का बड़ा वैसा ही निकला, उसकी लड़की स्त्री बड़े उच्च घराने की, बहुत सुंदर, उसको 3-4 लड़के, और वो एक कुंजड़ी जानती हैं, कुंजड़ी से फल विक्रय करने वाली से नीच जाति से उसको प्रेम हो गया और अपने घर में ले आया, रखने लग गया, उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाता, पत्नी से सज नहीं हुआ, उसने किरासन तेल ऊपर से ढाल करके जसलाई जला करके बस समाप्त किया, प्रेम बढ़ेगा। और राधा जी कहती हैं यदि कृष्ण किसी को प्यार करते हैं तो मैं दासी उसकी हो करके उसे मना करके कृष्ण से मिलन करा दूंगा, ऐसा कोई किसी को है? ऐसा नहीं सर, इसे जगत में प्रेम है राधा जी के लिए संभव। कहते हैं कि उसकी लाखों जन्म तक मैं सेवा करूंगी और सेवा करके कृष्ण से मिलन करा दूंगी। प्रेम का टूटने का कारण होने पर प्रेम और बढ़ जाता है, इसको कहते हैं प्रेम अपराधिक प्रेम। यही प्रेम और आगे बढ़ता है। जब प्रियतम को देखने से हृदय स्नेह से भर जाए, द्रवित हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, आंखों से आंसुओं की निरंतर धारा बहने लगे, हर्ष रोमांच कंप इत्यादि होने लगे, अस्तस्वात्विक विकार होने लगे, जैसे राधा जी का होता था। राधा जी जब कृष्ण को देखती हैं गोवर्धन के पर्वत के ऊपर में, एक नुकीले कांटे जैसे पत्थर के ऊपर में खड़ी हैं और पत्थर कैसे गर्म हो रहे हैं मानो आग के तपे हुए हों, और उसको उनको ऐसा होता है कृष्ण दर्शन के समय में मैं गलीचे में पैर रख करके पड़े आराम के साथ में कृष्ण को दर्शन कर, यह दूसरों के लिए संभव? और चित्त उनका द्रवित हो रहा है, इसको कहते हैं स्नेह। जगत में ऐसा स्नेह परिकरों में, विशेष परिकरों में हो सकता है साधारण, ये हम लोग केवल पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, भागवत में देख सकते हैं, भागवत में कम देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में और हमारे रूप गोस्वामी के काव्यों में ये सब अच्छी तरह से साहित्य में देख सकते हैं, और जगह नहीं देखने को मिलेगा। यही स्नेह जबकि और बढ़ जाता है तो वो टेढ़ा होने लगता है। कैसा टेढ़ा? कृष्ण बोले हैं तो उनसे बोले नहीं, धूर्ते प्रजंड तने तनुसुस्त बंदम माँ दक्षिणा भव कलंकिली लाघवाय राधे सुनि व्याहिताम इति शिक्षयन्ति देवी गुणई तो ललिताम ललिता। ललिता जी को प्रणाम कर रहे हैं क्या? ललिता जी कह रही हैं राधिका जी से, धूर्ते प्रजंड तने, ये कृष्ण बड़ा भारी धूर्त है, अंतर और बाहर का काला है, सहज सीधे उसे मत मिलो, मिलता है तो लौट जाओ, उसे बात मत करो, तब तो वो वशीभूत रहेगा और नहीं तो सहज बन जाएगी तो तुम्हारी उपेक्षा करेगा। तो ये प्रेम जब कुटिल हो जाता है तब इसको कहते हैं मान। पुनः यह मान जबकि और इतना बढ़ जाता है कि अपने में प्रियतम में कोई भेद नहीं रह जाता, उनका अंग भी अपना अंग मालूम होता है। जैसे किसी के सामने कोई महिला स्नान कर रही है, लज्जा करेगी? अब बाथरूम में अकेले चारों तरफ से दरवाजे बंद करके जब भी स्नान कर रही है तो क्या करेगी? उसका अंग और वो आंख दो है, उसमें कोई लज्जा नहीं। जब अपने प्रियतम कृष्ण के अंग भी अपना अंग ही जैसा मालूम होगा, और ये होगा कि लाख मनाएंगे और उनमें कोई भेद नहीं रह जाएगा, इसको कहते हैं प्रणय। राधा जी का कृष्ण के प्रति ऐसा प्रणय कैसा है? कृष्ण जी चिंता कर रहे हैं यह प्रणय कैसा है, कैसा है? कृष्ण ये जानते हैं मैं गोपियों को और राधा जी को जैसा प्यार करता हूँ ये तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि राधा जी हम बड़े सुंदर हैं, जगत में मुझसे सुंदर और कोई नहीं विश्व ब्रह्मांड में, किंतु राधा जी की सौंदर्य देख करके माधुर्य देख करके हमारा प्राण सुशीतल होता है, हमसे कोटि गुनी वो सुंदरी हैं, मैं मधुर हूँ, जगत के सब लोगों को आकर्षण करता हूँ, किंतु हमारे चित्त को कौन आकर्षण करता है? ये राधिका जी। हमारी बोली विश्व के सब लोगों को आकर्षण करती है, बड़ी मीठी और बंसी, ऐसा पशु पक्षी कीट पतंग सबको आकर्षण कर देती है, किंतु राधा जी की बोली जब बोलती है वो मधुर तो हमारी बंसी की तान भी चुप हो जाती है, मैं भी कुछ नहीं करता, पागल हो जाता। राधा जी में ये भाव, राधा जी मेरी प्रेम की गुरु हैं, मेरी सहेली हैं, सखी हैं, दासी हैं, हमारा सर्वस्व वही है। प्रेम की शिक्षा मैंने उनसे ली है, इसलिए हमारे प्रेम की गुरु भी हैं, सखी भी हैं, दासी भी हैं, प्रिया भी हैं, सब कुछ वो हमारे हैं। ऐसा किसी के लिए कृष्ण नहीं कभी नहीं कहा। किंतु एक बात है, एक चीज ऐसी मेरे अंदर में है विशेष, खूब अच्छी तरह से विचार करने पर मैं विचार कर पाता हूँ। ठीक है, मैं सबसे सुंदर हूँ, राधा जी मेरे सुंदर, किंतु हमको राधा जी आकर्षण कर लेती हैं, हमारी प्रेम की गुरु भी हैं, सौंदर्य की भी गुरु हैं, माधुर्य की भी, ये बात तो ठीक है। किंतु मेरे अंदर में न जाने क्या है जो राधा जी और गोपियां पागल हो जाती हैं। मैं तो पागल नहीं होता राधा जी को दे करके, किंतु ये पागल क्यों हो जाती है? प्रेम वैचित्र हो जाता है, राधा जी भूल जाती हैं अपने को तन्मय होकर, क्यों? कुछ है मेरे अंदर, मेरे अंदर में खूबसूरती में, हमारे माधुर्य में, हमारे बंसी के स्वाद में है जरूर कुछ। नहीं तो राधा जी ऐसे उन्मत्त हो जाती हैं, प्रेम वैचित्र इत्यादि, क्यों? क्या चीज है? मैं प्रेम का विषय हूं। और राधिका जी क्या है? प्रेम का विषय कृष्ण है और मैं प्रेम का आश्रय। जब तक मैं प्रेम का आश्रय न बनूं, राधा जी के भाव हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब तक मैं इस सौंदर्य को, माधुर्य को मैं समझ नहीं सकती, नहीं समझ सकता। देखो, कृष्ण अभी वृंदावन से मथुरा आए हैं, वो और बलदेव दोनों भैया, कंस ने देखा, चारु ने देखा, मुष्टिक ने देखा, कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए, कृष्ण को देखकर के खुशी हुए, उसके प्रति हिंसा जग उठी, कृष्ण को मारना चाहा, इसलिए चारण मुष्टिक पहलवानों को आदेश दिया, इसको अभी धर करके पकड़ करके गला दबा दो, खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बंसी, फिर डर की कोई बात नहीं। वृंदावन में जितने लोगों को भेजा वो मर करके वहीं पर रह गए, कोई संवाद देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम सभी लोग मिल करके इसको और बलदेव दोनों को ही हम खत्म कर दें। क्यों ऐसा हुआ? जरासंध ने भी तो कृष्ण को देखा, किंतु उनका माधुर्य सौंदर्य और उनकी उदारता वो समझ सका, वो शत्रु क्यों हो गया? दुर्योधन, दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा, उसके घर पर गए सुलह कराने के लिए, बोले ये युद्ध मत करो, तुम्हारा और पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, युद्ध बंद कर देना उचित है। पांडव लोग इसी में संतुष्ट हैं कि ये राज्य, आधा राज्य के बदले में उनको तुम केवल छोटे छोटे 5 गांव दे दो और कुछ नहीं कर चाहते, इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु दुर्योधन क्या बोला? बिना युद्ध के एक सुई भर नोक वेयर भी जमीन नहीं दूंगा। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी लौट आए, भगवान होते हुए भी क्यों? उसमें उनको ध्वंस करना था और धर्म की प्रतिष्ठा करानी थी, इसलिए। तो कौन सा विषय अभी बतला रहा था याद रख? राधा या प्रणय महिमा, तो ये प्रणय के लिए बतला रहा था। ये प्रणय क्या चीज है? प्रणय ऐसा है, हाँ, जब तक राधा जी का भाव हृदय में नहीं आएगा तब तक कृष्ण का रसास्वादन नहीं होगा। क्यों? जरासंध प्रेम नहीं था कृष्ण के प्रति, इसलिए शत्रु बन गया। केवल वही नहीं, जरासंध, कंस, ये शिशुपाल, दंतवक्र, जितने असुर थे, भक्त कितने थे, अधिकांश असुर कृष्ण को देखकर के चिढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं रहने से उनका आस्वादन नहीं होता, इसलिए कृष्ण प्रेम ही शास्त्रों में प्रयोजन बतला गया, कृष्ण नहीं। यदि प्रेम नहीं रहा, यदि राधा गोपीनाथ के प्रति प्रेम नहीं है, तो दर्शन करने की इच्छा नहीं है, और प्रेम रहेगा तो दस बार आएंगे, मनी मन में इनका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। इसलिए यह प्रेम ही हमको साधन करना होगा, जो आगे पहले गुरु से श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति इत्यादि के रूप में होता है। बिना भक्ति के वह प्रेम नहीं होगा, इसलिए यह प्रेम गोपियों में है, श्रीमती राधिका जी में है। यदि वो भाव हमको मिल जाए तो हम इस विषय का आस्वादन कर सकते हैं। राधा या प्रणय महिमा की दृशा, यह राधा जी की प्रणय महिमा कैसे है जो उनका ये सब चीजों का आस्वादन करती है। कृष्ण का रूप कैसा मधुर है, यह भाव जितना ही प्रेम जिसमें अधिक होगा वो इस चीज को समझेगा। उद्धव जी में बस प्रेम तक है, सखाओं में सुबल इत्यादि जो सखा है उनमें अनुराग तक है, यशोदा मैया में भी अनुराग तक है। कभी कभी सुबल सखा को महाभाव की कुछ झलक सी दिखती है, इसलिए वो लोग भी इतना आस्वादन नहीं कर सकते। यशोदा मैया में अनुराग तक है, इसलिए कृष्ण को देख करके राधा जी को जो भाव होते हैं यशोदा जी के नहीं होंगे। यशोदा जी राधा जी जैसी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकती, संभव पर नहीं है। उनका प्रेम कुछ विभाग है, विभक्त है। कैसे, नंद बाबा से आधार है ना, घर गृहस्थी भी तो है, इसलिए उनका प्रेम विभाग। कैसे प्रेम विभाग होता है उसको थोड़ा सा समझो, और गोपियों का प्रेम अखंड है इस चीज को समझो। द्वारका जी में कृष्ण ने शादी की, रुक्मिणी से शादी की, उसको 10 लड़के और एक लड़की हुई। जब पहला लड़का हुआ ना तो कृष्ण में और रुक्मिणी जो प्रेम था वो आधा बट गया, पूरे रूप से रुक्मिणी उनको प्रेम कर रही है, किंतु एक बच्चा यदि हो गया तो उनका प्रेम विभाजित हो गया, दो भाग में विभक्त, एक बेटे के लिए एक कृष्ण के लिए हो गया, विभाग हो गया। यदि 10 लड़के हुए तो उनका प्रेम 10 भागों में विभाग हो गया, और घर गृहस्थी और, इसलिए अखंड प्रेम नहीं रहा। गोपियों का कैसा, विवाह तो किया किंतु उनका पूरा अखंड प्रेम कृष्ण में था, पति में प्रेम नहीं, सास ससुर में भी प्रेम नहीं, घर में प्रीति नहीं, बच्चे थे नहीं, अखंड प्रेम। इसलिए कृष्ण उस प्रेम के ऋणी हैं। तो ये राधिका जी में यह महाभाव और उससे ऊपर वाला जो अंतिम सीमा तक है वो मोहन मोदन और मादन है, जो राधिका जी में केवल एक है। इसलिए कृष्ण के माधुर्य को रूप को अधिक देख करके आकर्षित और पावरी बन जाती है, उन्मत्त हो जाती है। और एक इच्छा इसके साथ में उनका माधुर्य आस्वादन से उनको कितना सुख होता है, कैसा किस जाति का सुख होता है, फिर से समझो। पहला, राधा जी की प्रणय महिमा हमारे प्रति कैसी। दूसरा, हमारे जो रूप में माधुर्य है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, परिकर माधुर्य। वेणु में माधुर्य है, कृष्ण के रूप में माधुर्य है, कृष्ण के गुणों में माधुर्य है। ये माधुर्य कैसे हैं, बिना राधिका जी के भाव के परिपूर्ण रूप में नहीं समझा जाएगा। कृष्ण यहाँ पर हम देखते हैं, हाथों में बंसी है, मोर मुकुट भी है, ब्रज भाव लाने की चेष्टा की गई है, और अभी जहाँ घंटी बजी आरती बजी सभी लोग घर में जाएं। इसलिए यदि इसमें आप लोगों को टेस्ट है, हमें टेस्ट है, राधिका जी छोड़ करके चली जाती नहीं जा सकती, गोपियां चली जाती प्राण जाने पर भी नहीं जाएंगी। इसलिए हम लोगों को उतना भी न तो प्रीति है, न भक्ति है, न कुछ है। अभी हम इनकी आराधना कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, हमारा घर सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, इससे अधिक बहुत कम लोगों को है। यदि पति कहे कि घर से निकाल देंगे, पैर तोड़ देंगे, मत जाना, और पति पत्नी भी कहे तुम जा रहे हो रसोई घर में नहीं बनेगी, और तुझसे हमारा संबंध, हम ही तलाक दे करके घर जाएंगे, आएंगे नहीं आते। राधा जी ऐसा मानेंगी, इसलिए श्रीमती राधिका जी कृष्ण प्रेम को सबसे अधिक आस्वादन करती हैं। इसलिए कृष्ण ने सोचा यदि राधा जी के भाव उनके अंग की कांति को ले लिया जाए तो हम इस चीज को अच्छी तरह से आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए अनर्पित करेंगी किरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसांग स्वभक्ति सियम हरिहपूर सुंदर स्यूत कदम्ब संदीत सदा हृदय कंदरे सुरत में सचिनंदन। ये प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव अंग कांति को लेकर के इस जगत में आए और कीर्तन के माध्यम से कुछ ही दिनों में सारे विश्व में, पहले सारे बंगाल में, सारे भारतवर्ष में और सारे विश्व में उस प्रेम का प्रचार किया। उस चैतन्य महाप्रभु को सत बार नमन करता हूँ, जिनके कृपा से ही हम लोग राधा माधव तक पहुँचे हैं, राधा गोपीनाथ और उनके माधुर्य को हम समझ सकते हैं, ऐसा प्रेम भी हम प्राप्त कर सकते हैं साधन के द्वारा, जो हमारी भी वास्ता उसी प्रकार की हो जाए। समय अधिक हो गया है, अब प्राय 10 मिनट 5 मिनट में अब बंद होने वाला है। एक कीर्तन करके
प्रेम पर भक्त और प्रेमात्म भक्त। उसमें से एक एक का हम विचार दे रहे हैं। उन विचारों के साथ में अपनी भक्ति का विचार आप करेंगे और उन्हें जो अच्छा लगे उनमें से ऐसे भक्त का अनुगमन करेंगे जो आपको वैसे ही भक्ति हो। पूरी तरह से सुन करके हमने कल प्रहलाद महाराज जी का भक्ति का हमने बताया। तत्पश्चात हमने शुद्ध भक्ति का साधन बताया नहीं, किंतु उसके आगे प्रेमी भक्त हनुमान का बताया। आज पढ़े थे हम शुद्ध भक्ति के संबंध में और शुद्ध भक्त के संबंध में बदला करके सभी आगे बढ़े। शुद्ध भक्तों में महाराज हरि का नाम आता है। ये प्रार्थना से जब साधन करते हैं तो भगवान के श्री मंदिर को अपनी सेवा करते हैं, अपने अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, अपने मस्तिष्क को लगा दिया भगवान के लिए रखाओं की चिंतन करते हैं। भक्त को तो इस प्रकार से साथ दर्शन करिया गोविंद जी का अवतरण के लिए भूले कि माला हाथ में नहीं आई। गोविंद जी की तो कुछ विकास जरूर सही है किंतु बहुत बात और आगे बढ़ना है। भक्ति के नियमों को यथाजथ पालन करना, दीक्षा लेना ही क्यों जरूरी नहीं है, उसे जरूरत है दीक्षा लेकर के उसके नियमों का पालन करना। वो अपने शिव को भगवान के चरणों में झुका करके साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगता है। ठाकुर जी को प्रणाम करते, वैष्णव को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते, छोटाष्टांग प्रणाम आठ कौन गुणों के ठाकुर जी को प्रणाम सीधे नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी के तरफ से चीज लेकर के नहीं करना चाहिए। इसका भी एक वैज्ञानिक पहलू है, जो लोग नहीं जानते वो तो सीधा ठाकुर जी के तरफ से चीज करते हैं। ऐसा न करके ठाकुर जी को दाहिने बाएं रख करके प्रणाम करें, यह शास्त्रीय विधि है। क्यों शास्त्रीय विधि है? यदि सीधा करेगा तो आपको अभिमान झुका के मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूं, तब आपको ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। क्यों उनको भी देखेंगे संगमरमर की मार्बल की या सोने की या लकड़ी की आप मूर्ति देखेंगे, ठाकुर जी नहीं देखेंगे। और जब अभिमान आपका दूर हो जाएगा कि प्रभु मैं इन जड़ हाथों से आपका दर्शन नहीं कर सकता, जब आपके चरणों में शरणागत हो जाऊंगा और आपकी नजर हमारे ऊपर में पड़ जाए तब तो आप दर्शन दे सकते। इस भाव इसलिए ठाकुर जी को पाया जा सके प्रणाम करना चाहिए। गुरु को सामने से प्रणाम करो, गुरु को संयमत रखो, गुरु जी को सामने रखकर के प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी को बहुत से लोग आदि परिक्रमा करते हैं, उनको वैष्णव और गुरु मान करके उनकी पूरी चार परिक्रमा करो कैसे ठाकुर जी की करते हैं, उनको गुरु और वैष्णव मान इस तरह से सब विधियां हैं। तो ये अपने आराध्य देव कृष्ण जी मंदिर में पूजा अपने आप करते, आरती अपने आप करते, नौकरों के द्वारा महीना में रखने के लिए पुजारियों के द्वारा नहीं, झाड़ू अपने आप लगाते ठाकुर जी के मंदिर में, उसको अपने हाथों से धोते, पानी के कप में भगवान का स्नान बाद और राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, भगवान के गुरु जी ने जो नाम दिया उस नाम को सपने कीर्तन करते, जीवा को प्रतिष्ठा में लगाते, भगवान का स्नान पाठ करने में और भगवान का जो प्रसाद दिया गया है ये भी उत्तर खाने के बाद में अपनी जीवा को प्रतिष्ठित करते। बच्चों को सदाचार मान देते, हाथों को ठाकुर जी की सेवा के लिए बच्चों और गुरु की सेवा के लिए पैर भगवान का धाम में जाने के लिए ये भी एक धाम है। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो पैरों से ठाकुर जी की सेवा हो रही है, धाम में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं। किस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, कभी लगाया कभी लगाया नहीं, ऐसा नहीं महीने बाद मंत्री रखती है, महीने बाद अपना कमांडर इनकी फरक किया, ब्राह्मण फरक किया, वो राज्यकाल चलाते राज्यकाल के लिए नहीं जाते बस उनको नियुक्त कर सका। और ठाकुर जी का सेवा था समान कृष्ण ठाकुर इत्यादि समान पास, ये खूब अपने यह है भक्ति के नियम। सब आचार को पकड़ना चाहिए, प्याज लहसुन मांस मछली से दूर रहो, सिगरेट भी ना लो, चाय पत्ती पड़ोस में भी तो लोग पैसे हैं, इस तरह से सदाचार रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, तब तो उसका क्रिया होगी, नहीं तो क्रिया नहीं होगी आपकी भक्ति पहले में ही कथा नहीं रह जाएगी, निष्ठा रुचि के रूप में प्रदर्शित नहीं होगी। उस समय में एक दिन उनके यहाँ शुरुआत का जैसे ही शंकर जी के अवतार बड़े सीधम आत्मा है, आकाश में विचरण करते हैं, जिसको जो बात है वो हो जाए, बड़ी लंबी लंबी जगह है उनके पास में पहुंचे। कुछ देर स्वागत था द्वादशी का हुआ, जहां पर कि महाप्रार्थी उत्पन्न हो जाए काशी को छोड़ करके महाप्रार्थी का जन्म है, बहुत से ऐसे नियम है। तो वो द्वादशी का उपवास कर रहे थे, उपवास करके और दूसरे दिन की तरह रेगुलर के ठाकुर जी की पूजा अपने हाथों से करके और उसको उनकी पत्नी ने बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और जो उनको पाठ करने के लिए जा रहे हैं एकादशी करके एक नियम समय होता, उस समय के अंदर में द्वादशी के अंदर में पारण कर रहे हैं, नहीं तो फल चला जाता है। उन्होंने पारण करने की व्यवस्था की, इसलिए जो माता जी आ गए उनको प्रणाम करके